In progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو کل ہم نے اس کلاس میں جو کہ رمضان المبارک میں روزانہ کے حساب سے چل رہی ہے، سورہ انعام کی تفسیر، جس میں ہم پڑھتے ہیں معارف القرآن کی جلد نمبر 3 میں سے، تو اس میں ہم نے خلاصہ تفسیر ان آیات کے پڑھنے شروع کر دیے تھے، یا پڑھنی شروع کر دی تھی، آیات نمبر 90 سے لے کے 94 سورت الانعام کی. تو اس میں شروع میں بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے شیخ تھے، شیخ ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی نبی علیہ السلام کے استاد بھی، شیخ بھی، اگرچہ کہ جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ جو ہے وہ درمیان میں بطور استاد کے کہہ دیا جاتا ہے، لیکن فرشتے کا واسطہ جو ہے یہ واسطہ عمومی طور پر نہیں سمجھا جاتا ہے، یہ کوئی باقاعدہ فزیکل واسطہ نہیں سمجھا جاتا. فرشتہ نورانی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو استعمال کرتے ہیں اپنے کام کروانے کے لیے، لیکن جو کام اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کرواتے ہیں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسبت اپنی ذات سے ہی کرتے ہیں کہ ہم نے ایسے کیا، ہم نے ویسے کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے وہ کام کروا رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے جان نکال لی، حالانکہ اسرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ جان نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے، سوائے اس کے عقیدے کی جب بات ہوگی تو وہاں پہ اسرائیل علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، ادروائز اللہ نے جان نکال لی، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کو جو علم پہنچایا، جو وحی پہنچائی، جو ہدایات پہنچائی، حتیٰ کہ جو صبر کی تلقین پہنچائی، تو وہ اللہ رب العزت نے پہنچائی نا، ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے نبی علیہ السلام کے استاد بھی ہوئے، اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے شیخ بھی ہوئے، جو تربیت کرتا ہے. شیخ کون ہوتا ہے؟ استاد اور شیخ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ استاد جو ہے وہ کتاب پڑھاتا ہے، اور جو ہے وہ الفاظ پڑھاتا ہے، الفاظ کے معنی بھی پڑھا دیتا ہے، لیکن روک ٹوک کرنا، تربیت کرنا، اصلاح کرنا، یہ شیخ کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مربی بھی اس کو کہتے ہیں، تربیت کرنے والا. تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی تربیت فرمائی کہ آپ غم نہ کیا کریں، ٹھیک ہے. اچھا، قدرت نے ساجس کے دل میں بات آئی تو پیچھے تھوڑا سا دیکھا، سورہ انعام کے اندر چند دن پہلے ہی ہم نے یہ آیات صراحتاً بھی پڑھی ہیں، جن میں صراحتاً اللہ رب العزت نے یہی الفاظ نبی علیہ السلام کو فرمائے تھے. آیات نمبر کون سی تھی؟ ہاں، 33، 33، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، کہ بے شک ہم کو معلوم ہے کہ آپ کو غم میں ڈال دیتی ہیں ان کی باتیں جو وہ کہتے ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، سو وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کیا فرما رہے ہیں کہ جو آپ کو جھٹلاتے ہیں نا، کہ آپ کو اپنا آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، بے شک یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. خالی آپ کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ آپ کا انکار کر کے یہ اللہ کی واضح نشانیاں جو آپ کے واسطے سے ہم نے ان لوگوں تک بھیجی ہیں، وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق کے झुटलाए गए आपसे पहले भी रसूल, फसबरू अला मा कुज़्ज़िबू, बस उन्होंने सबर किया इन लोगों के उनके झुटलाए जाने पर, यानी उनको जो उनके उम्मतियों ने उनके जमाने के लोगों ने झुटलाया है ना, तो सब रसूलों ने उस पर सबर किया, फसबरू वह उजू, और जो उनको अजियतें पहुंचाई गई, रसूलों को जो अजियतें पहुंचाई गई उन पर भी उन्होंने सबर किया, हत्ता अताहुम नसरुना, हत्ता कि हमारी मदद उन तक आ गई। ठीक है, हमारी मदद उन तक आ गई। कैसी मदद आ गई अल्लाह ताला की? अल्लाह ताला की मदद दो सूरतों में आती है। एक सूरत तो ये होती है कि मादी तौर पर कामयाबी हासिल हो जाती है कि रसूल जो है वो गालिब हो जाते हैं, काफिरों को शिकस्त दे देते हैं, और बाकायदा उनका झंडा जो है वो गड़ जाता है। ठीक है, ये एक शक्ल है कामयाबी की। ये कुछ रसूलों को मिली, सब रसूलों को नहीं मिली कि उनका झंडा गड़ गया, उनकी हुकूमत कायम हो गई। ये सब रसूलों को ये कामयाबी नहीं मिली। नबी अलैहिस्सलाम को मिली, मूसा अलैहिस्सलाम को भी एक हद तक मिली, सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली, ठीक है, लेकिन बहुत सौ को नहीं मिली। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिली लेकिन बहुत सौ को नहीं मिली। तो ये कामयाबी तो किसी को मिली किसी को नहीं मिली। लेकिन दूसरी कामयाबी क्या होती है जो कि सब रसूलों को मिली, वो कामयाबी अगर आप बता दें तो अच्छा हो। स्टूडेंट से भी तो पूछते रहना चाहिए ना, थोड़ी सी इंटरेक्शन रहती है क्लास के अंदर। तो दूसरी कामयाबी जो सारे रसूलों को मिली वो क्या? दुनिया के अंदर पूछना है, ये नहीं कि आखिरत में कामयाबी मिली। नहीं, हम आखिरत की कामयाबी की बात नहीं कर रहे, वो तो मिली ही मिली। हम दुनिया की कामयाबी की बात कर रहे हैं कि दुनिया में कौन सी दूसरी कामयाबी होती है जो सारे रसूलों को मिलती है। दिलों को इत्मीनान, रसूल के दिल को इत्मीनान हो गया। जी, इंटेलेक्चुअल कामयाबी, अकली कामयाबी, यानी दलाइल की कामयाबी जिसको कहते हैं, कि रसूलों के दलाइल ऐसे होते थे कि जिनके सामने जो इनकार करने वाले लोग होते थे वो भी नाकाम हो जाते थे। उनका इंटेलेक्चुअल इनकार, उनका अकली इनकार जो था ना, वो रसूलों के दलाइल के सामने वो किसी काबिल नहीं रहता था। वो हार जाते थे, अकली दलाइल में वो हार जाते थे। ठीक है, अकली दलाइल, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर लोग हार जाते थे। ठीक है, पिछले दिनों किसी ने कहा था ना, परसों तरसों, कि दीन जो है ना उसका अकली दलाइल से कोई काम नहीं है, उसका लॉजिक से कोई काम नहीं है, और जो साइंस है उसका ताल्लुक लॉजिक के साथ है। बिल्कुल बकवास है ये वाली बात, बिल्कुल बकवास है ये वाली बात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दीन का ताल्लुक अकली दलाइल के साथ है, साइंस का बल्कि कम होगा अकली दलाइल के साथ, दीन का तो पूरा का पूरा अकली दलाइल के साथ ताल्लुक है। ठीक है, तो अब वो अकल जो है वो किसी छोटे बेवकूफ इंसान की अकल की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, कम कम इल्म इंसान की अकल जो है ना उसके अंदर दीन के दलाइल नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन जिसकी जिसका इल्म ज्यादा होता है तो फिर उसको समझ में आता है कि दीन पूरा का पूरा जो है वो, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम मशाइख की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अकली बात। ठीक है, तो वो इल्म जरूरी होता है उसके लिए, जाहिर है जाहिल को तो वो तो अपनी छोटी मोटी अकल जो है ना उसी को समझता है कि वही अकल कुल है, लेकिन वो अकल में कुल नहीं होती। बहरहाल, तो दलाइल की कामयाबी नबियों को मिलती है। ठीक है, सब नबियों को मिलती है, कोई ऐसा कोई एक नबी ऐसा नहीं होता जो कि दलाइल में हार जाए, जो दलाइल में अपने मुखालिफिन से हार जाए, कोई एक नबी ऐसा नहीं। ठीक है, लेकिन जंग में हार जाना ये हो सकता है, किसी नबी को जो है वो शहीद कर दिया, कई नबियों को कत्ल कर दिया गया। ठीक है, और कई नबियों की कोई हुकूमत कायम नहीं हुई दुनिया के अंदर काफिरों के ऊपर। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हत्ता अताहुम नसरुना, हत्ता कि हमारी मदद आप तक आ जाए, वला मुबद्दला लिकलिमातिल्लाह, और अल्लाह के जो कलिमात है ना, यानी अल्लाह के जो जो फैसले हैं, ये बातें हैं, इनको कोई नहीं बदल सकता। वलकद जाअका मिन नबइल मुरसलीन, और आपको पहुंच चुकी हैं ये पुराने पिछले नबियों की बातें, उनके जो खबरें हैं वो आप तक हमने पहुंचा दी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अल्लाह ताला जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत फरमा रहे हैं, उनकी इस्लाह फरमा रहे हैं, उनको सबर की तलकीन कर रहे हैं, और पुराने वाकयात बता बता करके ये काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए नबी अलैहिस्सलाम का तो कोई शेख था ही नहीं जो उनको करता, उनकी तरबियत करता, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम का तो कोई उस्ताद ही नहीं था। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को क्लियर रखा ना, बिल्कुल दूर रखा, जैसे हम अपने बच्चों को दूर रखते हैं ना कि भाई वो कहीं ज्यादा मौलवी ना बन जाए, हम दूर रखते हैं उनको मौलवियों से, मशाइख से दूर रखते हैं, कहीं वो ज्यादा लंबी दाढ़ी वाड़ी ना उगाना शुरू कर दें, ठीक है। इसको इसको कहते हैं दूर रखना, ताकि कोई असर ना पड़ जाए। अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को दूर रखा, किताबों से भी और असादजा से भी। उस जमाने के जो असादजा थे, वरका बिन नौफिल, मदीना मक्का मुकरमा में रहते थे ना, मक्का मुकरमा के ही कुरैश में से ही थे ना, खदीजतुल कुबरा रहता ना, के रिश्तेदार थे ना, कजन थे ना, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम उनके पास नहीं जा सकते थे क्या, आसमानी किताबों का इल्म हासिल करने के लिए? और भी थे बहुत सारे जिनके पास आसमानी किताबों का इल्म था, लेकिन अल्लाह ताला मेड श्योर कि नबी अलैहिस्सलाम किसी के पास ना जाए, ठीक है। तो अब नबी अलैहिस्सलाम को इल्म कहाँ से मिलेगा, कैसे मिला सारा का सारा इल्म? डायरेक्ट अल्लाह ताला से मिला, ठीक है। बीच में कोई भी वास्ता, कोई भी जरिया अल्लाह ताला ने रखा ही नहीं नबी अलैहिस्सलाम और अपने दरमियान। अच्छा, तो ये तो पीछे की एक बात हो गई। फिर उसके बाद कल जो है वो एक और बहुत अहम बात क्लास के आखिर में हुई थी, कि ये जो फरमाया ना अल्लाह ताला ने कि नबी ये कहते थे कि हम तुमसे जो है वो ला असअलुकुम अलैहि अजरा, हम तुमसे कोई अजर नहीं मांगते, ठीक है। तो इसके ऊपर बड़ी तफसीली बात हुई थी कि उलमाए कराम की जो ये तयशुदा तनख्वाहें होती हैं, ठीक है, तो ये कहाँ से आ गई फिर, कि भाई जो वो दीन का काम करते हैं, दीन का इल्म पढ़ाते हैं, तो फिर इसकी कहाँ से जरूरत पेश आ गई? तो उसके ऊपर बड़ी तफसीली बात हो गई थी कल। तो उसमें ना किसी ने मर्दों की साइड पे किसी ने सवाल किया था कि सहाबा जो हैं वो तो जॉब भी करते थे, है ना, किसी के बाग पे जॉब कर रहे हैं, किसी के खेत पे जॉब कर रहे हैं, किसी के फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, खड्डी बनाने की फैक्ट्री में कोई सहाबी नौकरी कर रहा है, या सहाबा जो है वो तिजारत करते थे और साथ साथ दीन का काम भी करते थे, यानी दीन भी पढ़ते पढ़ाते थे। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि मौलवी साहब जो है वो ये काम नहीं कर सकते, उनको तो फुल टाइम जो है वो दीन का काम करना पड़ेगा? तो उसके ऊपर चंद बातें जहन में आ रही थी। एक तो ये बात हो गई थी कि सहाबा बहुत सारे थे जो कि बिल्कुल डेडिकेटेडली दीन का काम करते थे। बहुत सारे सहाबा ऐसे भी थे जैसे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रहता, और जो असहाबे सुफा में फुल टाइम जो रिहायशी इकामती सहाबा होते थे, है ना, मदारिस के अंदर भी, हम आज के दौर में भी ऐसा होता है, कुछ बच्चे जो है ना वो घर से पढ़ने के लिए मदरसे में आते हैं और फिर घर वापस चले जाते हैं, और कुछ बच्चे जो है वो अपने घर बार को छोड़ करके मदरसे में बोर्डिंग इख्तियार करते हैं, उनको इकामती जो है वो तुलबा कहते हैं, बोर्डिंग करने वाले तुलबा वहीं पे रहते हैं। तो सहाबा में भी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की, असहाबे सुफा की, जो कि मदरसे के अंदर ही रहते थे। पहला मदरसा सुफा का मदरसा मस्जिद नबवी में नबी अलैहिस्सलाम ने एस्टैब्लिश किया, ठीक है। तो उस आर्ग्यूमेंट का भी जवाब दे दिया था कल, सही है। और एक साथी ने बल्कि मुझसे कोई आर्टिकल भी शेयर किया था, वो मैं खुद नहीं पढ़ सका तो आपसे क्या शेयर करूंगा, लेकिन उसमें भी कोई ऐसी ही बात लग रही थी मुझे, दलाइल थे उसके, मजीद वाकयात थे उसके अंदर। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि सवाल करने ने वाले ने जो सवाल किया ना कि भाई पार्ट टाइम, यानी सहाबा पार्ट टाइम, चले जो सहाबा पार्ट टाइम करते भी थे, तो उसके ऊपर जवाब दिया था कि दीन का जो काम है ये फुल टाइम काम है, ठीक है, यानी दीनी उलूम का जो काम है ना, दीनी उलूम का जो काम है वो फुल टाइम करने का काम है, ठीक है। अब हम क्यों नहीं समझते उसको फुल टाइम करने का काम, उसकी एक वजह बनती है। क्या वजह बनती है? ये बिल्कुल वैसी वजह बनती है, वेरी सिमिलर टू वुमेन्स रोल, विमेन्स रोल इन सोसाइटी। क्या ताल्लुक बनता है इसका विमेन्स रोल इन सोसाइटी के साथ, है? उलमा का काम विमेन्स रोल इन सोसाइटी के साथ क्या बनता है? कि हमें उलमा का काम जो है वो नजर क्यों नहीं आता, हमें उलमा का काम जो है वो बहुत मुख्तसर क्यों लगता है, बहुत कम क्यों लगता है, कि भाई वो तो अपनी जॉब के साथ भी ये काम कर सकते हैं, वो तो बिजनेस के साथ भी ये काम कर सकते हैं, क्यों लगता है इस तरह से? बिल्कुल इसी वजह से हमें लगता है, जिस वजह से हमें औरत का भी काम लगता है कि यार ये क्या, ये क्या कर रही है। कहते हैं ना शैतान ने सिखाया हुआ है ना हमें, बहुत सारे लोग हम में से अभी भी ऐसे हैं जो शैतान की सिखाई हुई इस बात को औरतों के ऊपर चिस्पा करते हैं। क्या कहते हैं, किसी औरत को देखते हैं ना कि वो हाउसवाइफ है, राइट, और घर में बच्चों के साथ रहती है, तो क्या कहते हैं, तुम बच्चे पालती हो। क्या कहते हैं उसको, क्या तुम बच्चे पालती हो, तुम बच्चे पालती हो, ये काम करती हो तुम, ये कोई काम है करने का, तुम अपनी जिंदगी जाया कर रही हो, तुम अपनी सलाहियतें जाया कर रही हो, तुम अपना वक्त जाया कर रही हो, तुम बच्चे पाल रही हो। कहते हैं कैसे, कैसे कि नहीं कहते, ठीक है। अच्छा क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि शैतान ने सिखाया है कि ये जो काम है ना, इसको अंडरमाइन करो, इसको डिमीन करो, इसको लोगों की निगाह में बहुत ही बुरा बना करके पेश करो, ताकि औरत जो है वो बच्चे पालने के काम को बुरा समझना शुरू कर दे, गंदा समझना शुरू कर दे, बेहैसियत समझना शुरू कर दे, ताकि ताकि वो ये काम करना छोड़ दे, ताकि वो इससे जो है वो बदजन हो जाए और इसकी तरफ से उसकी तवज्जो हट जाए, इसकी तरफ से उसका वक्त हट जाए, ठीक है ना, और वो इसको अहमियत ना दे पाए। तो फिर क्या होगा, फिर बच्चे हम पालेंगे, कौन पालेगा, शैतान पालेगा फिर बच्चों को, क्योंकि माँ तो नहीं पाल रही ना, मुसलमान माँ थी, ईमान वाली माँ थी, वो तो नहीं पाल रही अब, तो फिर कौन पालेगा बच्चे, हैं, गाय पालेगी कोई, मिल्क क्या कहते हैं, रेड काओ मिल्क, है, रेड काओ वो मिल्क मिलता था पाकिस्तान के अंदर बचपन में हमारे, ठीक है, तो डिब्बे का दूध वो उस बच्चों को खिला देंगे, वो पल गया, डिब्बे का दूध पी लिया वो पल गया, ठीक है, और उसको जो है वो सीरियल खिला दिया और कॉर्नफ्लेक्स खिला दिया, वो पल गया, और बाकी जो तालीम व तरबियत है वो कौन करेगा, वो शैतान और शैतान के इदारे करेंगे, ठीक है ना। अगर माँ कर रही होती तो फिर शैतान को तो टाइम नहीं मिलता, शैतान को तो मौका नहीं मिलता ना कि वो बच्चों की तरबियत करता अपनी मर्जी के मुताबिक, अगर माँ कर रही होती, जाहिर सी बात है, माँ को बदगुमान करो इस रोल से, माँ को इस रोल से हटाओ, तब जो है वो शैतान के लिए आसान होगा और उसके इदारों के लिए, जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज लॉर्ड मुंह काले के बनाए हुए स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज है ना, उसका बहुत मुंह काला कर दिया, लेकिन बहुत तरह के और भी बहुत सारे थे, ठीक है, तो वो अकेला नहीं था, अकेला कोई थोड़ी को बंदा कोई काम करता है, लेकिन नाम तो फिर बड़े वाले का बदनाम ज्यादा होता है, जिस वजह से उसका जिक्र ज्यादा आ जाता है। तो इस तरह से किसी भी रोल को जब आप जो है वो, सर सैयद तो बाद में आए थे ना, वो तो उसके तरबियत याफ्ता शागिर्द थे सर सैयद साहब, लॉर्ड मुकाले उससे भी पहले था, तो यानी अपनों में से भी बहुत सारे ऐसे थे, सर सैयद जो है वो तो हिंदुस्तानी था ना, हिंदुस्तानी इंसान था ना, तो वो उसने वही वाला एजेंडा आगे जो है वो जा करके कैरी फॉरवर्ड किया, तो इस तरीके से जो है ना वो किरदार की अहमियत को घटा दो, ताकि या तो कोई उस किरदार को करना ही छोड़ दे, जैसे औरतों ने करना छोड़ दिया फिर उसके बाद, ठीक है ना, अब जो है वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये वाला काम कर रही होती हैं, किंडरगार्टन ये काम कर रहे होते हैं जो कि उनके बनाए हुए निजाम के ऊपर चल रहे होते हैं, या ये कि अगर वो अपना काम कर भी रहे हैं ना, अगर वो अपना काम कर भी रहे हैं, चाहे जिस वजह से भी कर रहे हों, बेचारों के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, जैसे औरत जो है वो जो घर बच्चे पाल रही होती है, तो वो भी इंतहाई, यानी अब यहाँ पे हम हर औरत की बात नहीं कर रहे, लेकिन अक्सर हुक्मुल कुल, अक्सरियत की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो अक्सरियत अपने बच्चे पाल भी रही होती है, तो वो भी एक, यानी एक क्या कहते हैं, दिल के बिल्कुल बेतमीनानी के साथ ना, यानी क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल लफ्ज नहीं आता भाई हमारे जहन में हर वक्त, तो आप बता दिया करें, किसके साथ पालती है फिर, दिल की क्या है, बोझल दिल के साथ पालती है, ठीक है, कराहियत के साथ वो ये काम कर रही होती है कि यार काश के मैं कोई बेहतर काम कर सकती होती इसके मुकाबले में, राइट, काश के मैं कोई बेहतर काम कर सकती होती इसके मुकाबले में, काश मैं भी जो है वो सेक्रेटरी बनती किसी की, मैं भी किसी सीईओ की सेक्रेटरी होती ताकि वो मुझसे दूसरी शादी कर लेता, अपनी बीवी को छोड़ता फिर मुझसे दूसरी शादी कर लेता, ठीक है, या काश कि मैं भी ड्राइव करती, मेरे पास भी अच्छे से गाड़ी होती, मैं भी जो है ना वो सड़क पे लोगों को ठोक ठोक करके फिर किसको बुलाते हैं, नजम को बुला रही होती, राइट, आप अक्सर देखें ना ये सऊदी अरब के अंदर नजम होता है, नजम एक इदारा है कि जब एक्सीडेंट हो जाए ना तो वो नजम को कॉल करते हैं, वो आकर के फिर एक्सीडेंट की रिपोर्ट बनाते हैं, आप अक्सर देखें, अक्सर लिटरली रात मुशाहिदा करें इस बात का, तो अक्सर जब नजम की गाड़ी खड़ी हुई होती है ना तो वो एक्सीडेंट जो है वो किसी कोई खातून जो है वहां पे खड़ी हुई होती है, ठीक है, तो मैं भी किसी की गाड़ी ठोकती, मैं भी जो है वो कुछ करती इस तरह की बातें, मैं भी रात को 12 बजे जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर नौकरी कर रही होती, राइट, हम तो हैरान होते हैं, अजीब, रात के 2 बज रहे हैं। हम गए ना अभी, हमारी फ्लाइट थी पाकिस्तान की चंद दिन पहले, तो लिटरली रात के 2 या 3 बज रहे थे, और जहां पे हम बैठ करके बोर्डिंग गार्ड गेट के ऊपर अपनी गाड़ी को, अपने जहाज का इंतजार कर रहे थे, इतनी सारी लड़कियां वहां पे जो है वो जॉब करने के लिए आई हुई, वो बैठ करके वहां पे गप्पे मार रही हैं आपस में। मैंने अपनी बीवी से कहा, मैंने ये रात के 2-3 बजे, इनका कोई घर नहीं है, इनको घर वर याद नहीं आता, राइट? ये यहाँ पे बैठ करके जो है वो शुगल कर रही है, मजे कर रही है, साथ साथ जॉब भी चल रही है, तनख्वाह भी मिल रही है, या कॉफी शॉप के ऊपर बैठी हुई है। एकदम वीरान इलाके में एक दफा हमारा गुजर हुआ, वहां पे एक छोटी सी जो है ना वो कॉफी शॉप जो सड़क के किनारे बनी हुई होती है, वो कॉफी शॉप के अंदर उस वक्त रात के 12:30 बजे लड़की बैठी हुई है। ठीक है, क्यों क्यों कर रही है वो ये काम? घर में नहीं रहना, राइट? घर में रहूंगी तो बच्चे पालने पड़ जाएंगे, और बच्चे पालना तो इतना इंतहाई घटिया काम है, राइट? इंतहाई घटिया काम है बच्चे पालना, तो इससे अच्छा मैं कॉफी शॉप में जो है वो रात को 12 बजे नौकरी कर लूं, सही है ना? तो ये देखो, ये होता है शैतान, इसने बनी आदम के साथ और बनी आदम की बेटियों के साथ इसने ये हरकत करी हुई है, और हम उसके ऊपर बड़े खुश हैं। ठीक है, तो या तो वो अपना काम छोड़ देता है बंदा, क्योंकि उसको लोगों ने इतने ताने दिए होते हैं ये काम करने के, जैसे औरतों ने छोड़ दिया ये काम करना, बहुत सारी औरतों ने, या ये कि अगर वो कर भी रहा होता है तो बेजारी के साथ कर रहा होता है, कराहियत के साथ कर रहा होता है, राइट? तो अब जो कराहियत के साथ जो वो काम करेगा, तो उससे क्या फायदा होगा उसको? उससे क्या काम के अंदर जो है वो खूबी आएगी, खूबसूरती आएगी, क्या उस काम के अंदर फिर फायदा होगा? इसी वजह से जो बच्चे पाल भी रही होती हैं, उनके बच्चे भी जो है वो बिगड़ ही रहे होते हैं, खाली खराब ही हो रहे होते हैं, क्योंकि माँ का दिल ही नहीं है कि मैं कैसे बच्चे पालूं। ठीक है, और क्या होता है कि सपोर्ट करने वाले फिर खत्म हो जाते हैं, उसके काम को सपोर्ट करने वाले फिर कोई नहीं होते, सब जो है वो उसको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। यही मामला उलमाए कराम के साथ हुआ, उलमा के साथ यही काम हुआ कि ये कौन सा काम करते हैं, जैसे बच्चे पालना एक इंतहाई यानी बुरी चीज बना के पेश किया गया, उसी तरीके से मौलवी क्या काम करता है। ठीक है, हमने, इन्होंने लिखा, हमने एम्बुलेंस ड्राइव करते हुए देखा औरत को रात के 12 बजे खोबर में। हमने अमेरिका के अंदर, और ये मैं बता भी चुका हूँ बयान के अंदर, कि अमेरिका के अंदर सुबह 4 बजे शायद मैं फजर के लिए निकला घर से, तो मैंने देखा है कि कचरे की जो गाड़ी गुजरती है ना, जो कचरे के ड्रम से कचरा उठाती है, वहां पर जो है वो औरत उस गाड़ी के ऊपर खड़ी हुई काम कर रही थी, कचरे का ड्रम उठा रही थी, वहां से जो है वो कचरे को संदार डाल रही थी। ठीक है, जब मैंने बयान में ये बात करी ना औरत की, बात ये समझाने के लिए कि देखो प्रोफेशनल बनाया औरत को, तो क्या कर रही है इस वक्त औरत ना, तो उसके ऊपर दिमाग तो बहुत सारों का होता है ना, खन्नास भरा हुआ होता है, तो वो आगे से इतराज भी तो करने वाले लोग दुनिया में मौजूद होते हैं ना। तो उन्होंने जवाब क्या दिया, किसी ने इतराज किया हमारी इस बात के, हमारे मुल्कों में भी तो मासियां होती हैं, हमारे मुल्कों में मासियां भी तो कचरे का काम कर रही होती हैं, तो क्या हो गया अगर अमेरिका के अंदर कचरे के गाड़ी के ऊपर जो है वो एक औरत काम करी है रात को 4 बजे? पहली बात तो ये कि रात को 4 बजे हमारे यहाँ मासी आकर काम कर रही होती है, और अगर काम कर भी रही होती है तो भाई क्यों कर रही होती है? अच्छी बात तो नहीं है ना, कोई फखर की बात तो नहीं है ना कि कोई औरत जो है वो अब उसको अपना घर छोड़ करके आपके घर में आकर के जो है वो इस तरीके से काम करना पड़ रहा है। उसका मर्द क्यों नहीं काम कर रहा, उसका मर्द ये वाला काम क्यों नहीं कर रहा? मर्द को कवाम अल्लाह ताला ने बनाया है तो क्यों बनाए? अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाते हैं, और किसी मर्द को ये बात याद नहीं रहती इल्ला माशा अल्लाह, कि अल्लाह ताला ने अर-रिजालु कव्वामून अलन निसा जहां पे फरमाया है ना, उसी आयत के अंदर आगे फरमाया है कि इस वजह से, वजह भी बताई है, क्योंकि मर्द इनके ऊपर खर्चा करते हैं, मर्द खर्चा करते हैं औरतों के ऊपर, यानी औरतों की जिम्मेदारियां, फाइनेंशियल जिम्मेदारियां मर्द संभालते हैं, इसलिए अर-रिजालु कव्वामून अलन निसा है। खामखा फ्री में नहीं है ये, राइट? खामखा फ्री में नहीं आपको बना दिया कवामून आला निसा। ठीक है, तो जो जहालत हमारे हमारे इलाकों में है, तो उसकी वो ये तो नहीं कि पाकिस्तान में कोई जहालत का काम होगा तो वो अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तान होने की वजह से उस जहालत को अब आप जो है वो अकलबंदी कहना शुरू कर देंगे, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस मुआशरे को तुमने अपना मुक्तदा बनाया हुआ है, अपना जो है वो सरदार बनाया हुआ है, और उसको बहुत अच्छा कहते हो, हम तो उसकी बुराइयां बता रहे हैं कि खुदा के वास्ते उसको अच्छा समझना छोड़ो, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अपना मुक्तदा बनाओ, राइट? दीन इस्लाम को, कुरान को अपना मुक्तदा बनाओ, अपना लीडर बनाओ, बजाय इसके कि अमेरिका के पीछे तुम भागे जा रहे हो। इस वजह से हम अमरीका की बुराइयां बयान करते हैं ना, पाकिस्तान की कौन सी अच्छाई बयान कर रहे हैं हम बैठ करके कि पाकिस्तान में जो काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से उलमाए कराम, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा, उलमाए कराम के किरदार को घटाओ, उनसे तोड़वाओ, उनको बुरा बनाओ ताकि शैतान अपने से जोड़ सके। तो अब मौलवी साहब का किरदार पहले तो किसी को पता ही नहीं होता कि क्या करते हैं ये, लेकिन जब थोड़ा सा ना बेवकूफों ने बात भी करनी शुरू करी तो क्या मौलवी का काम क्या है जी? मौलवी का काम है मस्जिद खोलना, ठीक है ना, मस्जिद खोलना। तो देखो हर मौलवी जो है ना वो टाइम पे मस्जिद खोल देता है, और मौलवी का काम क्या है जो है ना वो मस्जिद की सफाई करना, नमाज नमाज पढ़ाना, ये मौलवी का काम है। नमाज पढ़ाना मौलवी का काम है, क्योंकि ये कोई बुरी बात है नमाज पढ़ाना मौलवी का काम? हाँ बुरी बात है, ऑफ कोर्स बुरी बात है, नमाज पढ़ाना ये मौलवी का काम नहीं है, ठीक है। बल्कि चलें इसको रहने दें, क्योंकि फिर वो दूसरी तरफ डिस्कशन चली जाएगी। बल्कि मौलवी का असल काम क्या है? नमाज को कायम करना, नमाज को कायम करना, जिसमें सबसे पहले नमाज सिखाना भी आता है, नमाज सिखाना, ठीक है। तो इसको डिमीन करने के लिए कि मौलवी साहब ने मस्जिद खोलनी है, वो टाइम पे खोल देते हैं, देखो कितने अच्छे मौलवी हैं, टाइम पे मस्जिद खोल देते हैं, और मस्जिद को की लाइटें वाइटें भी सेट कर रहे होते हैं, लाइटें सारी चल रही होती हैं मस्जिद की, ठीक है। निकाह पढ़ा देते हैं और जनाजा पढ़ा देते हैं, निकाह पढ़ा देते हैं और जनाजा पढ़ा देते हैं, खलास मौलवी का काम खत्म हो गया। उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल्स इंडोक्ट्रिनेशन कैंप्स के निकले हुए इंटेलेक्चुअल जो है, यूनिवर्सिटीज आर इंडोक्ट्रिनेशन कैंप्स, तो उन इंडोक्ट्रिनेशन कैंप्स के निकले हुए इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि जब ये सिर्फ काम करना है तो कितनी मस्जिदें हैं हमारे मुल्क के अंदर, तो इतने सारे जो है वो हर साल जो लाखों की तादाद में उलमा बन के निकलते हैं, उनकी क्या जरूरत है? क्योंकि मस्जिदें इतनी थोड़ी सी हैं, मस्जिदें इतनी ज्यादा तो नहीं है कि हर साल आप जो है वो कई हजार उलमा बना के निकाल रहे हैं। जहालत की वजह से वो बंदा ये कह रहा था, अपनी जहालत की वजह से, क्योंकि उसको पता ही नहीं है मौलवी का काम क्या है, ठीक है। तो भाई मौलवी का ये काम नहीं है, इसी वजह से ना हम समझते हैं कि मौलवी का काम तो ऐसा कोई काम ही नहीं है, वो तो पार्ट टाइम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे सऊदी अरब में क्या होता है, सऊदी अरब में तो मौलवी के काम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ना, तो अब जो है ना मौलवी साहब पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं, नमाज के टाइम पे आकर के मस्जिद खोल देते हैं, वहां पे आके नमाज पढ़ा देते हैं, और बाकी टाइम पे अपनी जॉब कर रहे होते हैं, अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। हत्ता के बहुत से ऐसे टाइम भी होते हैं जैसे जोहर का वक्त जो है, तो उसमें जो है वो कहते हैं भाई जो जो नाइब इमाम होता है ना या कोई और बंदा होता है, उसे कहते हैं तुम नमाज पढ़ा देना, क्योंकि मैं तो जॉब पर हूँ, मैं जॉब से तो नहीं आ सकता। तो वो अपने किसी नायब को कहते हैं कि तुम जोहर पढ़ा देना, असर तुम पढ़ा देना। तो जोहर असर में अक्सर जो इमाम साहब होते हैं वो होते ही नहीं है मस्जिद के अंदर, ठीक है ना, जॉब की वजह से, क्योंकि वो पार्ट टाइम ये काम कर रहे हैं ना, क्योंकि काम ही ऐसा है, काम ही इतना कम है, तो फिर भाई जॉब क्यों ना करें, बिजनेस क्यों ना करें। हमारे जहन में यही है तसव्वुर कि मौलवी का काम इतना कम है कि उसको तो कमाई के ऊपर फोकस करना चाहिए, बिजनेस और जॉब के ऊपर फोकस करना चाहिए, उसको तो जो है वो साइंस पढ़नी चाहिए, और जो है उसको जो है वो और दूसरे उलूम पढ़ने चाहिए, क्योंकि असल काम तो उसका बहुत कम कम काम है। वी नीड टू नो एंड वी नीड टू टेल ईच अदर, हमें एक दूसरे को बताने की जरूरत है कि मौलवी का काम है क्या, मौलवी का काम है क्या। अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता होता, बल्कि अक्सर हमने तो देखा मौलवी साहब के भी जहन में मुस्तहजर नहीं होता कि ये उनका असल काम क्या है, पता उनको पता होता है लेकिन जहन में मुस्तहजर नहीं होता कि अगले बंदे को चुप करा सकें कि मेरा क्या काम है, ठीक है। तो देखिए चंद मिसालें, चंद मिसालें खाली, बहुत सारी मिसालें मिल सकती हैं अगर हम उसके ऊपर फोकस करके एक डॉक्यूमेंट बनाए ना, तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बन सकता है। चंद मिसालें साहब जिसके जहन में आई, जल्दी जल्दी हमने उसको लिखा यहाँ पे कि नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मकासद जो थे, बेअसद के मकासद, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, राइट? ये चार है ना बेअसद के मकासद। मौलवी कौन होता है? नबी का वारिस होता है, नबी का वारिस होता है। तो जो काम नबी ने किया वो मौलवी नहीं करेगा तो और कौन करेगा, राइट? मौलवियों ने तो वो सारे काम करने जो नबी अलैहिस्सलाम ने किए, क्योंकि अल उलमा वरासतुल अंबिया, ठीक है। तो यतलु अलैहिम आयात ही का मतलब क्या है कि तिलावत करके कुरान मजीद की आयात सुनानी है। तो भाई तिलावत करना आएगा तब सुनाएगा ना। और जो नबी अलैहिस्सलाम से तिलावतों के जो किराअतें, तिलावत की किराअतें आप सरसम से मनकूल हैं, वो किराअतें सीखेगा और आगे सिखाएगा तब ये काम हो सकेगा ना दुनिया में, वरना तो ये काम खत्म हो जाएगा। तो फिर यतलु अलैहिम आयाती ही का काम कैसे होगा दुनिया में, खत्म हो जाएगा फिर ये काम। तो इसके लिए तो भाई किराअत की का इल्म हासिल करना ये एक फुल फ्लेज्ड इल्म है, ये राइट डेडिकेटेड, इसके लिए बाकायदा मदारिस होते हैं, डेडिकेटेड इसके लिए जो है वो लोग इसके लिए फिक्स होते हैं जो कि किराअत का इल्म हासिल करते हैं और आगे सिखाते हैं फिर इसको, राइट। युजक्की हिम, ये तो हो गया ना मशायख का काम, मशायख ने चूंकि वो भी उलमाए बातिन होते हैं, वो इस इल्म को जो है वो नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने हासिल किया, ठीक है, जाहिर है वास्तों के साथ हासिल किया, लेकिन हासिल तो किया ना। अब वो ये वाला काम कर रहे होते हैं, उनका इतना बड़ा मसला नहीं है एक्चुअली, उनका काम जो है ना वो फिर अवाम उन्नास के साथ हो रहा होता है, इस वजह से अवाम उन्नास को पता होता है कि वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है ना। उनका डायरेक्ट अवाम उन्नास के साथ, आम लोगों के साथ वास्ता पड़ता रहता है, इस वजह से आम लोगों को फिर भी पता होता है कि मशायख क्या काम कर रहे हैं, जैसे हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह। अक्सर लोगों को पता था कि हजरत जी क्या कर रहे होते हैं, सारी चीजें नहीं पता थी, लेकिन बहुत सारी बातें पता थी हजरत जी क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उनका काम युजक्कीहिम का काम है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का तीसरा काम क्या है, पहला तो हो गया ना यतलु अलैहिम आयात, फिर हो गया युजक्कीहिम, फिर हो गया युअल्लिमुहुमुल किताब, इनको किताब का इल्म देना, ठीक है। अब किताब का इल्म जो है ना ये एक ऐसा काम है कि जिसमें अवाम से ताल्लुक जो है वो कम होता है, ये एक किताबी काम है, ये एक एकेडेमिक किस्म की एक्सरसाइज होती है, इसमें किताब के साथ वास्ता बहुत ज्यादा होता है, और किताब पढ़ने पढ़ाने का मामला फिर मदरसे के अंदर होता है। इस वजह से युअल्लिमुहुमुल किताब वाले जो उलमा होते हैं ना, जो ये वाला काम नबी अलैहिस्सलाम का कर रहे होते हैं, इनका अवामुन नास से इतना वास्ता नहीं पड़ता, अवामुन नास से वास्ता नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये तो किताब के अंदर लगे होते हैं, और किताब से देख देख करके जो है वो पुराने मसले भी लोगों को बता रहे होते हैं, ठीक है। जब कोई सवाल किया जाता है उनसे कि भाई ये सजदे सहव के मसाइल, अब सजदे सहव के मसाइल जो हैं ये अच्छे खासे इनके अंदर तफसील होती है, क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन पेश आ सकती है जो कि पहले से नहीं भी थी, लेकिन सजदे सहव के मसाइल कोई कोई मॉडर्न मसाइल नहीं है, ये तो नमाज के मसाइल है ना, ठीक है। लेकिन भाई इन मसाइल को अच्छी तरीके से इनके ऊपर उबूर होना और सवाल का जवाब देने की सलाहियत होना, इसके लिए किताबी इल्म अच्छी तरीके से सीखना पड़ता है। हैज निफास के मसाइल, हैज और निफास के मसाइल, अगरचे ये कोई नई मसाइल नहीं हैज और निफास ये कोई नई चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके मसाइल अच्छे खासे दकीक होते हैं, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इल्म और बहुत ज्यादा आपको अपडेट रहना पड़ता है। और इस्तेहाजा तीसरी चीज होती है, खवातीन जानती हैं इस्तेहाजा, इस्तेहाजा जो है ये तो दरमियान की, ये तो इस तरह की चीज होती है जो कि बीमारी ही होती है बेसिकली। अब इस्तेहाजा का मामला जो है ये हर दौर के अंदर, ये इसके अंदर तफसीलात ऐड होती रहती हैं, क्योंकि नई नई बीमारियां जो है वो काफिरों के निजाम के तहत चलोगे तो जाहिर है बीमार तो पड़ोगे ना, उनका बनाया हुआ जो है वो वीट खाओगे तो सेहतमंद तो नहीं रह सकते, उनकी बनाई हुई वाइट शुगर खाओगे, बनाई हुई से मुराद उनकी मैन्युफैक्चर की हुई वाइट शुगर खाओगे तो फिर सेहतमंद तो नहीं रह सकते ना, उनके बनाए हुए रोशनी के निजाम में जब तुम जिंदा रहोगे तो तुम्हारा सोने का साइकिल तो मैसअप हो जाएगा, रात को तुम जाग रहे होगे दिन को तुम सो रहे होगे, तो फिर तुम्हारी जिंदगी का जो वो जो एक साइकिल होता है क्या कहते हैं उसको, सी से बनता है ना वो साइकिल तो तुम्हारा अपसाइड डाउन हो जाएगा, तो तुम सेहतमंद तो नहीं रह सकते, तो अब तुम्हारे अंदर होंगी बीमारियां, जब तुम्हारे अंदर बीमारियां होंगी तो तुम्हारी औरतों के अंदर फिर इस्तेहाजा के मसाइल भी पैदा होंगे। अब इस्तेहाजा के नए नए मसाइल आ रहे हैं, इसका कौन जवाब देगा, कोई पार्ट टाइम बंदा इसका जवाब नहीं दे सकता, सर्कैडियन रिदम, राइट, ये रिदम आपका सारा का सारा अपसेट हो जाता है। अब जो मसाइल पैदा हो रहे हैं तो इन मसाइल का जवाब देने के लिए तो फिर तहकीकी काम की जरूरत है ना, राइट। तो वो तहकीकी काम जो है वो कोई पार्ट टाइम बंदा नहीं कर सकता, उसके लिए तो फुल टाइम करना पड़ता है। लेकिन अच्छा, ये तो चंद एक मसाइल हो गए ना, हैज निफास के और इस्तेहाजा के मसाइल है, ठीक है। फिर जो है वो जकात के मसाइल। अब जकात का मामला सीधा सीधा ये तो नहीं है कि भाई सोना चांदी है बस, और उसके बाद उसकी जकात निकाल दी, खत्म, खलास। नहीं, जब से फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो काफिरों के हाथ में आए हैं, सोना चांदी का तो निजाम ही खत्म कर दिया उन्होंने। अब तो सारा डॉलर बिल्स का निजाम, ठीक है, बिल्स का निजाम। और बिल्स के निजाम के अंदर भी फिर आगे गए, अब ये जो है वो स्टॉक मार्केट की जकात, राइट, और जो है वो फाइनेंशियल इक्विटीज की जकात, म्यूचुअल फंड्स की जकात, ये सारे नए नए मसले हैं। इन पे तहकीक करना और इनके ऊपर जो है वो जकात के मसाइल उम्मत को बताना, इसके लिए एक किताबी और तहकीकी काम की जरूरत है, ठीक है। और फिर और इतना बड़ा काम, बातिल फिरके, शैतान के तो फिर स्टूडेंट्स होते हैं ना दुनिया के अंदर, तो वो फिर बातिल फिरके बनाता है, जैसे कादियानियत का मसला। और उसके अलावा कितने, अब तो ऐसा लगता है रोजाना के हिसाब से कोई बातिल फिरके जो है वो पैदा हो रहे होते हैं। इंटरनेट के ऊपर तो हर बंदा आ जाता है अपना कोई नया दीन लेकर के। तो अब इनमें उम्मत की रहनुमाई करना कि भाई नहीं, ये अकायद जो ये साहब बात कर रहे हैं ये गलत हैं, और साथ साथ प्रूव भी करना कि ये क्यों गलत है। कुरान मजीद से इसका क्या जवाब मिलता है, हदीस मुबारक से इसका क्या जवाब हमें मिलता है। ये इल्म, ये पार्ट टाइम हासिल करने वाला और पार्ट टाइम आगे पहुंचाने वाला इल्म नहीं है, इसके लिए फुल टाइम आपको डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, राइट। सुन्नतें क्या हैं भाई, अकल तो ये कहती है कि जब अल्लाह से आपने मांग लिया तो बस अल्लाह सब कुछ कर देगा, राइट। जब अल्लाह से मांग लिया तो अल्लाह ने सब कुछ करना है, मैंने क्या करना, ठीक है ना। तवक्कुल भी इसी को कहते हैं। लेकिन फिर शैतान कहता है, शैतान फिर हमें ये भी तो कहता है, अच्छा तवक्कुल करना है तो पूरा तवक्कुल करो ना, फिर तुम्हें करने की क्या जरूरत है, फिर जो अल्लाह अल्लाह ने करना है, तुमने तो अल्लाह से बात कर ली, हो गया काम तुम्हारा सारा खत्म, ठीक है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अल्लाह से मांग लिया, तवक्कुल कर लिया, अब खुद कुछ नहीं करना। क्यों क्यों भाई, ऐसा क्यों नहीं है? अकल तो कहती है बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, अल्लाह ही सब कुछ करेगा। नहीं, क्यों नहीं करेगा अल्लाह ताला सब कुछ, इसलिए कि अल्लाह ने अपने नबी को भेजा और नबी ने हमें खुद असबाब इख्तियार करने सिखाए, असबाब इख्तियार करने। तो अब ये असबाब इख्तियार करना क्या हो गया, सुन्नत हो गया, सुन्नत हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, असबाब इख्तियार करना। लेकिन कौन से असबाब इख्तियार करना सुन्नत है और कौन से असबाब इख्तियार करना सुन्नत नहीं है, या असबाब को किस तरह से इस्तेमाल करना सुन्नत कहलाएगा और असबाब को किस तरह से इस्तेमाल करना बिदत कहलाएगा या हराम कहलाएगा, सुन्नत नहीं कहलाएगा, ये इल्म कैसे हासिल होगा? ये कोई पार्ट टाइम करने वाला इल्म नहीं है, सुन्नतों का इल्म, तफसीली उलूम कि सुन्नतें क्या हैं और क्या चीजें सुन्नत नहीं है, ये तफसीली उलूम मांगता है ये। उलमा का ये सब काम है और इसके अलावा भी अनगिनत काम ऐसे हैं जो कि उलमा के करने के हैं, ठीक है। और हम क्या समझते हैं, पार्ट टाइम क्यों नहीं कर सकते ये वाला अपना काम, इनको तो बिजनेस करना चाहिए, इनको तो जो है वो टेक्नोलॉजी में यूनिवर्सिटी जाकर टेक्नोलॉजी का इल्म हासिल करना चाहिए, इनको जो है वो फलाना इल्म हासिल करना चाहिए, और इनको जो है वो जॉब करनी चाहिए। ये दूसरों के ऊपर बोझ क्यों बनते हैं, ये दूसरों के ऊपर बोझ क्यों बनते हैं? जहालत, खालिसतन जहालत, और काफिरों की साजिश की वजह से जहालत हमारे दरमियान बहुत आम हुई भी है, ठीक है। ए अकल व तवक्कल, ठीक है, जब पीछे बात हुई वो असबाब इख्तियार करने, लेकिन असबाब में अच्छा मजे की बात एक और अल्लाह ने दिल में डाली थोड़ी देर पहले, कि नबी अलैहि सलाम ने असबाब इख्तियार करना। अच्छा, अगर हमारे सर्फ के जो माशाल्लाह एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं वो अगर हमें बताएं, असबाब का लफ्ज जो है वो सबब जो है, ये तो अरबी जुबान का लफ्ज है ना, तो इसका फेले अमर क्या बनेगा, असबाब इख्तियार करने का फेले अमर, सब बाबा यूसबिबु तस्बीबन है अलमर मिनहु उसबुब, क्या बनेगा इसका, सबब, अगर आप बाबे तफील से करें तो सब सबब नहीं, चले अगर सबब और यसबुबु तो उसबुब बनेगा इसका इख्तियार, इसका फेले अमर, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये क्यों नहीं फरमाया, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर उसबुब बनेगा, ठीक है, अज्यूम उसबुब बनेगा इसका, ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये क्यों नहीं फरमाया उसबुब व तवक्कल,
ठीक है, ये सबब व तवक्कल, ये क्यों नहीं फरमाया कि अस्बाब इख्तियार करो फिर तवक्कुल करो, बल्कि फरमाया ए अकल व तवक्कल, ए अकल व तवक्कल। और अकल का जो लफ्ज है ये अरबी जुबान का लफ्ज है, ये कोई हमने ईजाद नहीं किया। तो ए अकल व तवक्कल क्यों फरमाया कि अकल इस्तेमाल करो फिर तवक्कुल करो। क्या मतलब, तर्जुमा तो हम उर्दू में ये कर देते हैं ना, अस्बाब इख्तियार करो फिर तवक्कुल करो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अकल व तवक्कल। क्या बात समझ में आती है कि अस्बाब इख्तियार करो लेकिन बेवकूफी के अस्बाब इख्तियार ना करो, बेतुके अस्बाब इख्तियार ना करो, बल्कि अकलमंद, अकलमंदी वाले अस्बाब इख्तियार करो, जिनकी तुक बनती हो वैसे अस्बाब इख्तियार करो, बेवकूफी के अस्बाब इख्तियार ना करो, और फिर उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करो। ठीक है, तो अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, अस्बाब इख्तियार करने पड़ेंगे, लेकिन बेवकूफी के नहीं। कि ऊंट को जो है वो अगर वो साहबी ने पूछा था ना कि मैं ऊंट को बांधूं और फिर तवक्कुल करूं, या तवक्कुल करूं और ऊंट को जो है वो खुला छोड़ दूं, बस अल्लाह पे तवक्कुल करूं कि मेरा अल्लाह जो है वो मेरे ऊंट को महफूज रखेगा। आपने फरमाया कि ए अकल व तवक्कल, नहीं, ऊंट को बांधो फिर जो है वो तवक्कुल करो कि अल्लाह ताला आप उसकी हिफाजत करेंगे। ठीक है, तो अकल इस्तेमाल करो, क्या मतलब, बांधो उसको, उसको बांधो, क्या मतलब कि ऐसे मत बांध देना कि उसकी गर्दन ही जो है ना वो घुट जाए, गर्दन घोट के उसको मत बांध देना, इतना टाइट ही बांध देना कि उसकी गर्दन ही घुट जाए, या उसको तुम जो है वो भागने से अगर रोकना चाहते हो तो तुम उसके कूचे नहीं काट देना, जैसे वो साले अलैहिस्सलाम की ऊँटी की, ऊँटनी की जो है ना वो उन लोगों ने कूचे काट दी थी, उसको जो है वो टांगे उसकी काट दी थी, तो तुम अपने ऊँटनी की टांगे मत काट देना कि वो भाग नहीं सकेगा फिर, क्योंकि तुम टांगे काट दोगे तो फिर वो ऊंट तुम्हारे फायदे के काबिल नहीं रहेगा। तो उसको तमीज के साथ बांधो, अकल इस्तेमाल करो, तमीज के साथ उसको बांधो। ठीक है, तो कहने का मकसद सारा का सारा ये था कि उलमा का जो काम है ना वो बहुत सारा काम है और बहुत अहम तरीन काम है, लेकिन हमें पता नहीं होता, तो इस वजह से हम कहते हैं कि यार ये पार्ट टाइम क्यों नहीं कर सकते वाला काम। दीन को हम बोझ समझते हैं, इसलिए इसका काम करने वालों को हम सोसाइटी पर बोझ समझते हैं, बस ऊपर ऊपर से मोहब्बत के दावे हैं। ठीक है, मोहब्बत के दावे भी कहाँ हैं बस। चले, तो ये जो है ना वो अब उलमा चूंकि किताबी काम कर रहे होते हैं, तहकीकी काम कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल जिस तरीके से लैब में जो काम कर रहे होते हैं ना, लेबोरेटरीज में जो रिसर्च का काम कर रहे होते हैं, अब जो है वो उनकी जिम्मेदारी फिर हुकूमत ने उठानी होती है, और अगर हुकूमत नहीं उठा रही तो भाई किसी प्राइवेट कॉरपोरेशन ने उठानी होगी, या कुछ प्राइवेट लोगों के ग्रुप को उठानी पड़ेगी उनकी जिम्मेदारी। ठीक है, जिनको वो उस काम की अहमियत नजर आती है, समझ में आती है, ताकि वो फोकस होकर के अपना काम कर सके। बिल्कुल इसी तरीके से दीन का भी जो काम है, इसको भी जो है वो या तो हुकूमत उठाए, जो कि है नहीं दुनिया के अंदर कोई ऐसी हुकूमत जो कि उठाएगी, इस वजह से जो अवाम दीन को अहम समझते हैं अपने लिए, अपनी औलादों के लिए, उनको फिर ये निजाम बनाना पड़ेगा, उनका ये बेवकूफी की बात ही नहीं चलेंगी कि अल्लाह पे तवक्कुल करो और तुम्हें जो है वो कोई जरूरत नहीं है इसबाब की, तुम बगैर इसबाब के काम करो, नहीं, ये उनका सोचने का काम है, उनको ये काम सोचने दीजिए, आप अपना काम करें, आपका काम है इसबाब बनाना, आपका काम है स्पॉन्सर्ड रिसर्च, यू हैव टू री स्पॉन्सर दैट रिसर्च। ठीक है, तो दिस इज वॉट यू आर सपोज टू डू, उसके ऊपर कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अच्छा, आगे जो है वो फरमाते हैं कि ये कुरान तो, हम खुलासे तफसीर में आगे पढ़ रहे हैं कि ये कुरान तो सिर्फ तमाम जहानों के वास्ते एक नसीहत है कि जिसको मानने से तुम्हारा ही नफा और ना मानने से तुम्हारा ही नुकसान है। ठीक है, ये सब जो हमने बातें करी हैं ये हमने कोई कुरान मजीद से हट के बातें नहीं करी है, सब कुरान मजीद की तफसीर के अंदर ही शामिल था। ठीक है, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि ला असअलुकुम अलैहि अजरा की क्या हकीकत है, और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कैसे कैसे अप्लाई होता है, और कैसे कैसे जो है ना वो इसके अंदर से एक्सेप्शन निकलती हैं, जैसे जो है वो उलेमाए कराम का काम। ये कुरान की तफसीर से हट के कोई बातें नहीं थी, अगर बात को समझा जाए तो। ये कुरान मजीद तो तमाम जहानों के वास्ते एक नसीहत है, अगर ये बात हमने नहीं समझी तो फिर कुरान मजीद के उलूम जो है वो फिर खत्म हो जाएंगे। हमारी नस्लों में ट्रांसफर नहीं होंगे। हाँ, दुनिया में कहीं ना कहीं तो चलते रहेंगे, जैसे अल्लाह ताला ने वादा किया है, कुरान के उलूम को अल्लाह ताला महफूज फरमाएंगे, लेकिन वो हमारी नस्लों में महफूज नहीं रहेगा, हमारी नस्लों में महफूज नहीं रहेगा अगर हमने बात को इनकार कर दिया, रद्द कर दिया जो नसीहत हम तक पहुंचाई जा रही है। ठीक है, तो जिसको मानने से तुम्हारा ही नफा है और ना मानने से तुम्हारा ही नुकसान है। और इन मुनकर लोगों ने अल्लाह ताला की जैसी कदर पहचानना वाजिब थी वैसी कदर ना पहचानी। मिसाल के तौर पर क्लास में किसकी बातें हो रही हैं, अल्लाह की बातें हो रही हैं, और ये बैठे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस टाइप करके भेज रहे हैं इस वक्त। भाई वो काम अब बाद में करें, इस वक्त अल्लाह की बातें जो कुरान मजीद के वास्ते से और इस क्लास के वास्ते से आपको समझाई जा रही हैं, आप उनको क्यों नहीं फोकस करके सुन रहे हैं, उनके नोट्स क्यों नहीं बना रहे, आप व्हाट्सएप मैसेजेस क्यों कर रहे हैं? जिसने किया है वो बात समझ जाए, अल्लाह करे। ठीक है, कदर करें इन बातों की, ये किसी इंसान की बातें, भाई जुबान तो इंसानी की होती है ना, लेकिन बात किसकी की जा रही है यहाँ पर? अल्लाह की आवाज तो नहीं आएगी, अल्लाह की जुबान तो आपको नाउज बिल्ला नजर नहीं आएगी, नहीं अल्लाह की जुबान होगी तब मैं कदर करूंगी वरना नहीं करूंगी। जुबान तो भाई हम जैसे झूठे और बुरे इंसानों की जुबान सुननी पड़ेगी ना। ठीक है, नहीं मैं नहीं कदर करनी मैंने आपको, तो नहीं जी ठीक है मर्जी आपकी। तो वैसी कदर ना पहचानी तो यही नाकदरी होती है, जबकि मुंह भर कर यूं कह दिया, अल्लाह ताला ने किसी बशर पर कोई चीज यानी कोई किताब अभी नाजिल नहीं की, ये कहना ना कदर शनासी है, इसलिए है कि इससे मसला नबूवत का इनकार लाजिम आता है। ठीक है, कि अल्लाह ने कोई नाजिल ही नहीं किया, यानी कोई नबी वबी कोई है ही नहीं। और फिर इसके ऊपर मजीद तफसील से बात हुई थी कि क्या नाउज बिल्ला अल्लाह ताला जालिम है हमारी तरह, कि किसी को धक्के दे दे किसी नई सिचुएशन के अंदर और कोई गाइडेंस ना हो, कोई जो है वो टीचर ना हो, कोई किताब ना हो, कोई जो है वो रहनुमाई ना हो, ये तो जुल्म है ना, जैसा हम करते हैं अपनी बच्चियों के साथ, ये जुल्म करते हैं। ठीक है, धक्के दे देते हैं उनको, शादी में सारा खर्चा कर देते हैं, और शादी के खर्चे से उसके आगे की जिंदगी का क्या ताल्लुक है यार? तुमने कौन से खाने खिलाए हैं, 10 डिशें तुमने शादी में खिला दी हैं, राइट? और तुमने शादी के अंदर इतना बड़ा जो है वो हॉल जो है वो बुक कर दिया है, और उसके अंदर जो है वो इतने तुमने पता नहीं क्या क्या कर दिए हैं काम। अब उसने क्या करना है, उसका शादी के बाद उसने क्या करना है इन सब कामों का, इन सब खानों का? बेटी से मोहब्बत हो तो करे ना, राइट? असल में तो अपने आप से मोहब्बत होती है। लोग क्या कहेंगे अगर बड़ा हॉल ना किया, लोग क्या कहेंगे अगर डिश 100 डिशें ना दिखाई ना खिलाई, और बहाना क्या बनाते हैं, मेरी बेटी को ताना देंगे इस वजह से मैंने किया ये सब कुछ। असल जो है ना वो अपने जो है ना वो चोर होता है कि मुझे ताना मिलेंगे, मुझे ताने मिलेंगे कि मैंने इतनी डिशें नहीं खिलाई, इस वजह से खिलाफ सुन्नत जा करके जो है ना वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए, सुन्नत की खिलाफ वर्जी करते हुए खूब जो है वो पैसे लुटा रहे होते हैं बेटी की शादी के ऊपर। ठीक है, और नाम बेटी का लगा रहे होते हैं कि बेटी की खातिर ये सब कुछ किया है, और बेटी के बाद की जिंदगी की खातिर तुमने क्या किया, ये पैसे जो तुमने इतने जो है वो शादी के ऊपर खर्च किए हैं, उसके जोड़े जो है वो लाखों में खरीद खरीद करके, वो पैसे अगर उसको दे देते, ठीक है, तो वो उसकी जिंदगी में काम आ जाता उसके, राइट? नहीं, ये तो अल्लाह ताला ऐसे नहीं है भाई, अल्लाह ताला ऐसे नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने रसूल भी भेजा, किताब भी भेजी, और साथ साथ जो है ना फिर रसूल के साथ मदद करने वाले भी भेजे, सहाबा भी भेजे साथ साथ। ठीक है, निकाह का सुन्नत तरीका क्या है भाई? क्या मतलब यार निकाह का सुन्नत तरीका भाई? सुन्नत तरीका ईजाब और कबूल है, छुआरे छुआरे खिलाना, ठीक है, और ठीक है आप जाहिर है आज के जमाने के हिसाब से आपको कुछ और खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन इसराफ इसराफ ना करें, जो आज के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो इसराफ बनता हो ना वो ना करें। ठीक है, वरना तो दो गवाह और जो है वो एक इमाम साहब जो पढ़ाने वाले हो, और बाकी जो है वो खुद ही खिला देना, इसमें अंदर कुछ फराइज हैं, कुछ जो है वो सुन्नतें हैं वगैरह। ठीक है, इसराफ तो गुनाह है ना, ये तो शैतान के भाइयों यानी जो मुबज़िरीन जो है, ये तो काना इख्वानु शयातीन, शैतान शैतान का भाई होता है जो कि ये फजूल खर्ची कर रहा होता है। ठीक है, अब निकाह की सुन्नत का तरीका सीख लीजिए अगर आपको नहीं पता। अच्छा, तो ये कहना नाकदर शनासी है, इसीलिए है कि इससे मसले नबूवत का इनकार लाजिम आता है और नबूवत का मुनकिर अल्लाह ताला की तकजीब करता है, ठीक है, और तस्दीक हक वाजिब है, हक बात की तस्दीक करना कि हाँ वाकई ये हक है, ये वाजिब है। क्या मतलब होता है वाजिब का? वाजिब का मतलब ये होता है कि नहीं करोगे तो पिटाई होगी, ये होता है वाजिब का मतलब, ठीक है। इन्नल मुबज्जीन कानू इखवान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा, जज़ाकुम अल्लाह खैर, सूरह इसरा वल मेराज की आयत नंबर 27, ठीक है। तो फजूल खर्च को जो है ना अल्लाह ताला ने शैतान का भाई करार दिया। अच्छा, और शैतान ऐसा बदबخت है कि वो अपने भाई के साथ भी भलाई नहीं करता कि हाँ ये तो चलो मेरा भाई है मैं इसको नुकसान ही पहुंचाऊं, ऐसा बदबخت है वो अपने भाई को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अच्छा, तो फरमाया कि तस्दीक हक वाजिब है, बस इसमें कदर शनासी वाजिब में इख्लाल हुआ, यानी आपने वाजिब की कदर शनासी नहीं करी तो खलल वाकई हो गया इसके अंदर, आपने गैप क्रिएट कर दिया, ये तो क्या आपने जो है वो रिसालत का इनकार कर दिया और ये कह दिया कोई नाजिल नहीं क्या अल्लाह ताला ने, ये तो तहकीकी जवाब था, ठीक है, यानी ये एक इंटेलेक्चुअल और रिसर्च ओरिएंटेड किस्म का जवाब ये होता है कि इस तरीके से तो आपने हक शनासी का इनकार कर दिया। और इल्जामी मुस्कुत जवाब देने के लिए, मुस्कुत है या सकता का मतलब होता है खामोश रहना, ठीक है, तो मुस्कुत का मतलब ऐसा हुआ कि जैसे चुप करा देने वाले जवाब है ना, इसको इल्जामी जवाब भी कहते हैं अरबी में, हमने टीचर्स को बहुत पहले की बात है कभी सुना था किसी को, बच्चों को कह रही थी उसकुत उसकुत चुप हो जाओ जैसे कहते हैं ना कीप क्वाइट उसकुत उसकुत, तो वो याद आया तो ये बात इस लफ्ज की समझ में आ गया कि इल्जामी मुस्कुत जवाब यानी चुप करा देने वाला जवाब, तो वो ये है कि आप इनसे कह दीजिए कि ये तो बतलाओ कि वो किताब किसने नाजिल की है कि जिसको मूसा अलैहि सलाम लाए थे, यानी तौरात जिसको तुम भी मानते हो, अब चुप हो जाएंगे क्योंकि वो कहते हैं ना कि मूसा अलैहि सलाम जो है वो तौरात के साथ आए थे, उनको चुप करा दो। जज़ाकुमुल्लाह, खवातीन में भी ये आयत उन्होंने कॉपी कर दी कापियों ने। अच्छा, तो जिसकी ये कैफियत है कि वो खुद मिसल नूर के वाजे है, ठीक है, अब डायरेक्ट मैसेज में आपने किया है तो बाकियों को तो नजर नहीं आएगा, फायदा क्या हुआ इसका, एक मिनट है ना, हम इसको कॉपी कर देते हैं, ऐसे इतनी जरूरत नहीं थी इसकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये तो वो तो आप उनसे ये कहिए कि तो बताओ कि वो किताब किसने नाजिल की है जिसको मूसा अलैहि सलाम लाए थे, यानी तौरात तौरात जिसको तुम भी मानते हो, जिसकी कैफियत है कि वो खुद मिसल नूर के वाजह है और जिनकी हिदायत के लिए वो आई थी, उन लोगों के लिए वो बवजह बयान शराय के जरिए हिदायत, जरिया हिदायत है, यानी उस किताब में क्या था, कहानियां और किस्से नहीं थे, खाली लोरियां नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला के अहकाम थे जिसको शरीयत कहते हैं, ठीक है। तो शरीयत के अहकाम जो होते हैं वही तो हिदायत होती है कि भाई ये करो ये करो, अल्लाह की रजा मिलेगी, अल्लाह ताला कोई पत्थर नहीं है कि जिसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, तुम जब करते हो उसके उसके मर्जी के मुताबिक काम करते हो, अल्लाह ताला खुश होता है, अल्लाह ताला राजी होता है, ये मॉडर्न एथियस कुछ भी कहते रहे, वी डोंट केयर, राइट, अल्लाह ताला राजी होता है, अल्लाह ताला खुश होता है, हत्ता के मिशकात शरीफ की तो रिवायत है, शुरू में ही कहीं पर है ये मिशकात शरीफ के अंदर, कि अल्लाह ताला को अजियत होती है, अल्लाह ताला को अजियत होती है कि जब उसके जो है ना वो हुक्मों के खिलाफ वर्जी की जा रही होती है, ठीक है। तो जी तो अल्लाह ताला के हुक्म ये है शरीयत, और ये शरीयत जो है ना ये अल्लाह ताला की किताबों में आती है। और एक बात, बहुत सारे लोग यहाँ पे नए भी होते हैं, रमजान की बरकत से जो है वो क्लास में आ भी जाते हैं, तो इस वजह से बात आज दोबारा कर रहा है कि ये जो आज का मॉडर्न एथियज्म का जो नजरिया है, जिसके के सिर्फ एथियस नहीं, सिर्फ डिक्लेयर्ड एथियस नहीं, बल्कि अच्छे खासे दीनदार मुसलमान तक जो है ना वो भी इसी के कायल नजर आते हैं कि इस दीन के अंदर सब कुछ है सिवाय अहकामात के, अल्लाह ताला के हुक्मों के अलावा सब कुछ है, सारे जो है तमाशे हैं, सारे जो है वो सेलिब्रेशन हैं, सारे जो है वो ओकेजन हैं, ठीक है ना, और सारी जो है वो तजल्लियात हैं, और सारी जो है ना वो अनवारात हैं, और पता नहीं क्या क्या है इस दीन के अंदर अल्लाह के अहकाम के अलावा। और अल्लाह की मोहब्बत भी जो है ना उसका भी अहकाम से कोई ताल्लुक नहीं है, बस अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाओ, बस डूब जाओ, कोई हाल तारी हो जाए तुम्हारे ऊपर अल्लाह की मोहब्बत में, पसीने आने शुरू हो जाए या आंसू गिरने शुरू हो जाए, और बस ये अल्लाह की मोहब्बत, बस अल्लाह की मोहब्बत, बस ये है हमारा दीन। डूब जाओ अल्लाह की मोहब्बत में, तारे नजर आना शुरू हो जाए और आसमान नजर आना शुरू हो जाए, और रातों को जागना शुरू हो जाओ, और ये करना शुरू हो जाओ और वो करना शुरू हो जाओ, राइट, ये है हमारा दीन। हुक्म किधर गए? नहीं, हुक्म की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह ताला इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता हुक्मों हुक्मों से। तो ये जो है ना, ये खाली मॉडर्न डिक्लेयर्ड एथियस्ट का नजरिया नहीं है, ये एक आम मुसलमान का भी यही नजरिया इस वक्त बन गया है, इल्ला माशाल्लाह ऑफ कोर्स। तो उसके ऊपर हम ये कहते हैं कि हम जानते हैं ना इस बात को, अब तक तो माशाल्लाह क्योंकि दीन इतना हवाएं चल चुकी हैं, तो अब तो सबको पता चल गया होगा कि कुरान मजीद जो है ये अल्लाह ताला की तखलीक नहीं है, ये अल्लाह ताला की मखलूक नहीं है। कुरान मजीद ये क्या है, क्या है भाई? अल्लाह ताला का की सिफत है। हाँ, ये अल्लाह ताला की सिफत है, अल्लाह ताला का कलाम है ना, और कलाम जो है ये सिफत होती है, अल्लाह ताला की सिफत यानी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक अंग्रेजी में जो कहेंगे उसको, ठीक है, कलाम, किसी का कलाम जो होता है ना उसकी सिफत होती है, ठीक है। तो इस यानी किसी की सिफत का इनकार करना ये उसका इनकार कहलाता है, किसी की सिफत की तज़हीक करना ये उसकी जात की तज़हीक करना कहलाता है, ठीक है। जैसे किसी की सूरत है ना, वो किसी की सूरत जो है वो जैसी भी अल्लाह ताला ने बनाई है, आप उसकी सूरत की जो है ना वो बुराई करना शुरू कर दें तो फिर इसका मतलब क्या होगा, या चले अच्छाई करना शुरू कर दें, आपकी सूरत बड़ी अच्छी है, आपकी शक्ल सूरत बड़ी अच्छी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो आप उस बंदे की तारीफ कर रहे हैं, राइट, या आप वह किसी अलग से किसी चीज की तारीफ कर रहे हैं, उस बंदे की तारीफ नहीं कर रहे। जब आप उसकी सूरत की तारीफ कर रहे हैं तो आप उस बंदे की तारीफ कर रहे हैं ना, उसी तरह अगर आप उसकी सूरत की शक्ल की जो है वो बुराई करना शुरू कर दें, क्योंकि ये उसकी सिफत है, ये उसका मुत्तसिफ है वो इस सिफत के साथ, ये सिफत उससे जुदा नहीं हो सकती, तो अगर आप उसकी बुराई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये आप उस जात की बुराई कर रहे हैं ना, तुम्हारी शक्ल तो इस काबिल ही नहीं है कि किसी को दिखाई जा सके, राइट। कुरान अल्लाह की सिफत है, अगर कुरान की तस्दीक करेंगे, अगर कुरान का इनकार करेंगे तो अल्लाह का इनकार कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो अहकामात शरीयत के आए हैं ये किधर से आए हैं, कहाँ से आए भाई? मौलवी साहब ने बनाया ना है? नहीं, मौलवी साहब ने नहीं बनाए, ये मौलवी साहब ने तो बताए हैं खाली, ये कुरान, ये अहकामात कहाँ से आते हैं, ये इसी कुरान में से आते हैं जो अल्लाह की सिफत है। अगर आप अहकामात का इनकार कर दें तो दरअसल अल्लाह की सिफत का इनकार कर रहे हैं, क्योंकि अहकामात कुरान मजीद से ही आते हैं, बिल वास्ता आए या बिला वास्ता आए ये कुरान मजीद से ही आते हैं। तो ये जो दीन में से हमने अहकामात की सिग्निफिकेंस को निकाल दिया है ना, और बाकी सारी सिग्निफिकेंसेस उसके अंदर जो है वो हमने रिटेन कर ली हैं, हम इससे अल्लाह की तजलील कर रहे हैं, कि नाकाम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, इससे तौबा करने की जरूरत है हमें। अल्लाह की मोहब्बत जो है ना ये अल्लाह के अहकाम पे अमल करने से अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, इसके बगैर नहीं मिल जाती। अल्लाह के अहकाम को किसी काबिल भी नहीं समझ रहे और जो है वो अल्लाह की मोहब्बत में डूबे हुए हैं और मोहब्बत के प्रचार करे चले जा रहे हैं दुनिया जहान के अंदर, अहकाम का पता ही कोई नहीं, ना अहकाम की कोई बात हो रही है, ना अहकाम की जो है कोई अहमियत बयान हो रही है, ठीक है। या उन्होंने क्या लिखा भाई, या युअज़ीनी इब्न आदम, मुझे अजियत दी इब्न आदम ने, यसुबुद्दहर जब उसने जमाने को बुरा भला कहा, वह अनदहर और मैं जमाना हूं, यानी अल्लाह ताला जो है वो जमाने के खालिक है, जमाने के मालिक है, ठीक है, बेयद यिल अमर, मेरे हाथों में हुक्म है, अकलुबुल लैल व नहार, और मैं लैल और नहार को उलटता पलटता रहता हूँ, ठीक है। ये मिशाल शरीफ की रिवायत यहाँ पे हमारे भाई ने नकल भी कर दी। तो अल्लाह ताला को अजियत, अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो, ये हदीस कुदसी होगी, अल्लाह ताला ऐसे फरमाते हैं कि बनी आदम ने मुझे अजियत दी, ठीक है, या अजियत देता है। तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला कोई कोई ताल्लुक ही नहीं है इन सब चीज़ों का अल्लाह ताला के साथ, जाहिल है, जाहिल ऐसी बातें कर सकता है और क्या कर सकता है। तो ये जो बवजह बयान शराय के वो हिदायतनामा है, यानी ऐसे ही हिदायतनामा नहीं है, शरीयत के अहकाम की वजह से वो हिदायतनामा है। अगर तुमने उसको निकाल दिया तो तुमने हिदायतनामे होने का इनकार कर दिया, फिर इसका मतलब है जिसको तुमने अपने अगराज नफसानिया के लिए मुतफर्रक औराक में रख छोड़ा है, यानी यहूदियों का अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि तुमने ना अपने नफसानी ख्वाहिशों को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए तुमने इनको अब कंबाइन नहीं करके रखा हुआ, ठीक है, जिन में जितने औराक को चाहा उनको जाया कर देते हो, जिसमें तुम्हारे मतलब के खिलाफ कोई बात ना हो, ठीक है ना, जिसके अंदर जो है वो ऐसी बातें हो जिनको तुम आसानी से लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, हालांकि आसमानी किताब की तो हर बात ही अहम होती है, लेकिन जिसको तुम मैनिपुलेट अपने तौर पर कर पाते हो उसको तो तुम दिखा देते हो लोगों को, ठीक है, और बहुत सी बातों को जो अपने मतलब के खिलाफ हैं, यानी जिन औराक में वो लिखी हुई हैं, तो उन औराक को जिनके अंदर वो बातें लिखी हुई जो तुम्हारे मतलब के खिलाफ हैं, तुम उनको छुपाते हो, और इस किताब की बदौलत तुमको बहुत सी ऐसी बातें तालीम की गई जिनको कबल किताब मिलने के ना तुम, यानी कौम बनी इसराइल जो के वक्त नुजूल आयत मौजूद थी, यानी यहूदी जो उस वक्त मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे करीब सिलसिले के बड़े जानते थे। मतलब ये कि जिस तौरात की ये हालत है कि इसको अव्वलन तो तुम मानते हो, दूसरे बवजह नूरो खुदा होने के मानने के काबिल भी है, तीसरे हर वक्त तुम्हारे इस्तेमाल में है, वो इस्तेमाल तुम्हारा शर्मनाक इस्तेमाल है कि तुम उसको ऐसे जो है ना वो सेलेक्टिव दीन, जैसे हमारा होता है ना सेलेक्टिव दीन, जो जो हमें हमें सूट करता है, जैसे हमारे हकूक क्या हैं वो तो हम दीन से लेते हैं और सबको बोलते हैं ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, राइट, और जो मेरे फराइज थे उसको छुपाते हैं लोगों से कि नहीं, मैं मेरे कोई फराइज नहीं है, मुझे कोई थोड़ी अपने औलाद का हक अदा करना था, राइट, हाँ मेरा हक है बतौर वालिदैन के, मेरा हक है, औलाद का क्या हक है, नहीं, ये कोई थोड़ी, ये कहाँ से आ गया यार, दीन में औलाद के हक के कहाँ से तस्करा आ गया, खाम खाम औलाद को गुमराह करने के लिए बातें करते हैं, औलाद का हक, औलाद का कोई हक नहीं होता, या अगर होता भी है तो वो खाना पीना खिला देना, वो तो हम खिलाते हैं, खाना पीना तो खिला देते हैं, कपड़े भी जो है वो खरीद देते हैं उनके लिए, बस हो गया ना हक पूरा, और क्या जान लोगे, जान लोगे क्या हमारी, हमारे एक दोस्त बड़े मजे से कहते थे क्या जान लोगे तो ये हमारा भी बिल्कुल वही बनी इसराइल वाला, जब भी अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा के अंदर सिर्फ दो गुमराही के रास्ते बताए, सिर्फ दो गुमराही के रास्ते, कौन से दो रास्ते, गैर मग़दूब अलैहिम वल दाल, क्यों बताए सिर्फ दो गुमराही के रास्ते, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत जो है वो इन्हीं दो गुमराही के रास्तों में से किसी एक के ऊपर या दोनों के ऊपर चल रही होगी, और ये दो गुमराही के रास्ते किसके हैं, दोनों बनी इसराइल के, एक यहूद दूसरे नसारा, नसारा के भी जो उलमा है वो वही बनी इसराइल से आए हुए, बाकी आवाम फिर वो ठीक है, नसारा के अंदर फिर नॉन बनी इसराइल वाले लोग भी आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहूद तो गैर मग़दूब अलैहिम तो मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये तो सिर्फ यहूद के लिए, और वल दालीन ये नसारा के लिए है, और नसारा भी जो है वो अक्सर जो है वो उन्हीं के ऑफ शूट्स हैं, ऑफ शूट्स कह सकते हैं आप उनको, क्योंकि ईसाइत बनाई किसने, यहूदियों ने बनाई, राइट, असल जो ईसाइत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे उसको खराब किसने किया, यहूदियों ने खराब किया, तो इस तरह से ईसाइत भी जो है ना वो यहूदियत ही की पैदावार कहलाएगी, ठीक है, तो सेंट पॉल उनका नाम आता है, उसने बनाई, ठीक है, वो तो यहूदी था ना, तो हम भी वही हरकतें कर रहे होते हैं जो कि ये कर रहे होते थे। यानी सेलेक्टिव दीन, अपनी मर्जी का दीन, और जो अपने खिलाफ उसको छुपाते हैं, उसको उसकी बात ही नहीं करना चाहते। भाई बात तो ऐसे करो ना कि हाँ भाई मैं भी अगर कोई गलत काम कर रहा हूं तो वो गलत है, चाहे मैं कर रहा हूं लेकिन वो गलत है, और उसके ऊपर अल्लाह से तौबा करना, अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए। लोगों को भी बता देना कि भाई हाँ मैं डिनाई नहीं करता कि मैं गलत कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए, आप भी दुआ करें मेरे लिए, मैं भी कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे तौबा की तौफीक अता फरमाए। ये तो नहीं ना कि जो अपना गलत है उसको छुपा दिया बिल्कुल उठा करके, और उसको सही बना करके पेश करना शुरू कर दिया। ये तो जो है वो बनी इसराइल वालों का की हरकत थी, जैसा कुरान में अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ सके आज की क्लास में भी, लेकिन उम्मीद है कि जो बातें हुई हैं वो बेकार नहीं जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे एक दरख्वास्त आई है या एक हुक्म आया है, तौबा कलमात आज पढ़ा दीजिए। आज हफ्ते का दिन है, आज इंडिया पाकिस्तान में भी छुट्टी होती है, सऊदी अरब में भी छुट्टी होती है, तो एक कॉमन छुट्टी का दिन है, तो इट मेक सेंस के आज अगर हम कर लें। एक और मैसेज आया हुआ, वो भी मैं पढ़ लूँ पहले, कि रमज़ान में रात में अगर इबादत के लिए जागें तो फजर बाद का सोना कैसा है, हमारे हजरत जी का क्या तरीका होता था, रहबरी फरमा दीजिए। हजरत जी की बात ना करें क्योंकि आप जो है ना वो हजरत जी के लेवल पे नहीं है, और हजरत जी के जिस किस्म की जिम्मेदारियां होती थी और जिस किस्म के मामूलात होते थे ना, आप वो नहीं कर सकते, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। ठीक है, हम आपको बताते हैं जो हजरत जी ने सिखाया है, जो बताया है। ठीक है, इसको कहते हैं कौली। कौली हुक्म जो है ना ये फ़िई हुक्म से ज्यादा अहम होता है, क्योंकि बड़ों के जो अफ़ाल होते हैं ना वो उनमें से बहुत से ऐसे, सारे नहीं लेकिन बहुत से ऐसे अफ़ाल होते हैं जिनको कि हम कॉपी नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी इस्तेदाद इतनी नहीं होती और हमारा वो लेवल ऑफ काम ऐसा नहीं होता जैसा उनका होता है। ठीक है, इसी वजह से जो वो कहीं करने के लिए जो है ना वो हमें करना होता है, इसको कौली हुक्म कहते हैं। ठीक है, तो अर्जी का कौली हुक्म पिछले दिनों जो है वो तफसील से सारे ने पढ़ के भी सुनाया था और बात भी करी थी, वो ये है कि रात जो है वो अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है। रमजान मुबारक में इतना जागें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगला दिन आपका मुतासर ना हो। ठीक है, ये रमजान में जागने वाली रात, जगने वाली रात, जागने वाली रात के तमाशे जो बनाए हुए हैं ना, ये भाई इबादत करें थोड़ी करें, अच्छी करें। ठीक है ना, खलक अलमौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम, क्या है उसके बाद, अक्सर वो अमला नहीं, अहसन वो अमला। ठीक है, अहसन अमल करें ये देखने के लिए अल्लाह ने मौत और हयात को बनाया। तो चंद रिकात पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, खुशू और खुजू के साथ पढ़ें। ठीक है, रमजान की जो तरावी जो है ना, इसको क्या कहते हैं अरबी में, क्या कहते हैं भाई तरावी को, तरावी का लफ्ज भी है वैसे अरबी का लफ्ज है, लेकिन क्या कहते हैं हदीस के अंदर, मन सामन सामन नहार है, क्या है ये हदीस उमर का क्या है, जिसने दिन के रोजे रखे और रात का कयाम किया। तो रात के कयाम की क्या मतलब होता है, तरावी क्या चीज है, ये कयामुल लैल नहीं है, वहां मन कामा रमदाना है, ये क्या है, ये रात को आप खड़े नहीं होते, तरावी 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 क्या है मतलब, यार अजीब जो है ना वो हमने तरावी को गोया के ना एक कोई कोई तीसरी इबादत बना दिया है, ये तो इबादत ही नहीं है जैसे, ये तो पता नहीं क्या है ये है? तो तरावी इबादत नहीं है क्या, तरावी के बाद इबादत याद आती है कि अच्छा अब इबादत करनी है, तो तरावी में क्या कर रहे थे भाई। ठीक है, तो दो इबादतें हैं रात की, कयामुल लैल ठीक है ना, जो सुन्नत से साबित हैं, एक है तरावी रमजान मुबारक के अंदर जो 20 रकत होती है, 8 रकत नहीं होती, 12 रकत नहीं होती, 20 रकत होती है, बहुत दलायल है इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, 20 रकत तरावी ये है सुन्नत से साबित, और तहज्जुद, तहज्जुद कब होती है, सेहरी से पहले का जो टाइम होता है। ठीक है ना, ये रात, ये जगना जो है ना, जगना ये शैतान की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम अगर नहीं सोया करते थे तो नबी अलैहिस्सलाम का जमाना देखो, नबी अलैहिस्सलाम की इस्तेदाद भी तो देखो ना, और नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी तो देखो, वो सब तो नहीं देखते ना, यानी एक तमाशा। हमारे बच्चे भी, बेटे साहब भी एक दिन कहने लगे, बैठे हुए इधर, तो वो कहने लगे सुबह को ज्यादा अच्छा याद होता है, सुबह को ज्यादा अच्छा याद होता है, इसलिए सुबह को याद करना है, सुबह को कुरान मजीद याद कर रहे हैं माशाल्लाह है? मैंने कहा भाई सुबह को याद होता है तो इसका ताल्लुक रात के सोने से भी तो है ना, रात को आप सोए नहीं और कहें जी सुबह को याद अच्छा होता है, ये बेवकूफी की बात है। सुबह को अच्छा याद होने के लिए रात को सोना भी पड़ता है। नहीं, रात को नहीं सोएंगे, लेकिन फिर भी सुबह का अच्छा याद होना है, ये धोखा देना है अपने आप को। उसी तरीके से तहज्जुद पढ़नी है जी, तहज्जुद पढ़नी है जी, तहज्जुद पढ़नी है जी, तहज्जुद पढ़नी है, सोना नहीं है रात को, राइट। रात को तो पार्टी करनी है, रात को जो है वो तो जगजगा करना है, रात को तो गप्पे करनी है, रात को तो फलाना काम करना है। और वहां पे सुन्नत, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत किधर याद आ रही है? तहज्जुद के वक्त याद आ रही है, सही है ना? नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत और कोई नहीं थी, बस ये तहज्जुद ही थी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत, ठीक है। तो ये ना, ये एक ब्रोकन दीन है, ब्रोकन दीन जो हमने बनाया है भाई, ये असल में ब्रोकन नहीं था, असल में ये ब्रोकन नहीं था। ये बीमारियों का जो है वो मर अमराज का शिकार होते हैं, और जिस्मानी अमराज के, खाली जिस्मानी अमराज का शिकार नहीं हो रहे होते, जहनी अमराज का शिकार हो रहे होते हैं और होए हुए हैं। मेंटल हेल्थ का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि कोई उसका हिसाब नहीं है। एक से एक टर्म्स हैं, ओसीडी, ओसीडी तो लाइन लगी हुई है ओसीडीज की, और उसके अलावा भी पता नहीं कौन कौन सी जो है वो, डिप्रेशन तो ना जाने क्या क्या, उसकी लाइन लगी हुई है। जहालत है ये, बिल्कुल दीन के नाम पे जहालत, ठीक है। तो भाई गलत, गलत को गलत मानेंगे तब जा करके उससे तौबे भी करेंगे। हम कौन सा बहुत नेक है, हम कौन सा जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन गलत को गलत माने तो सही ना, कम से कम, ताकि तौबा की तौफीक तो मिले, वरना तो बिदत ही बन जाएंगे। बिदती को तौबा की तौफीक नहीं मिलती, हम सब के सब बिदती बने हुए। हमने एक जो है ना वो हरी पगड़ी वालों को बिदती करा दिया भाई, और अपने आप को फारिग कर लिया। नहीं, हम बिदती नहीं है जी, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, बिदती तो सारे के सारे वो हैं। आपने दीन के अंदर नई नई चीजें बनाई हुई हैं, राइट। आधी सुन्नत ले ली, आधी जो है वो अपनी तरफ से चीज ऐड कर दी, और उसको सुन्नत का नाम देना शुरू कर दिया, राइट। बिल्कुल बेजोड़ किस्म की सुन्नतें, जिसकी जोड़ ही नहीं बनता हो कहीं से, वो उसको आपने सुन्नत का नाम दिया हुआ है, तो क्या इसको बिदत नहीं कहते? किसको कहते हैं फिर बिदत? तमाशे लगा के रखे हुए हैं और उसको दीन बना के समझा हुआ है भाई, सारे के सारे बिदत ही हैं। हमें तौबा करने की जरूरत है, वरना अगर बिदत के ऊपर जो है वो इसरार करते रहे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिदती को तौबा की तौफीक नहीं मिलती, क्योंकि उसको सवाब समझ के कर रहा होता है, सवाब समझ के वो बिदत को कर रहा होता है, जैसे हम कर रहे हैं, सवाब समझ के बिदत बिदत के ऊपर अमल कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। इन्होंने क्या लिखा है? आसानी खुशी तरावी, आसानी खुशी, अच्छा, दिन के 20 फर्ज सलाह के निकात हैं, ये किधर से लेकर के आई हैं आप? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, दीन के 20 फर्ज सलात हैं की रकात हैं, पता नहीं आपने क्या लिखा। नहीं, तरावी जो है वो सुन्नत है, सुन्नत मौकदा है, और इसकी 20 रकात होती हैं, फर्ज ये नहीं होती है, सुन्नत मौकदा होती है, ठीक है। और तरवीहा को जो है वो आपने रौह से निकाला है, आसानी खुशी बहुत मजे की बात है भैया, आपको पता नहीं क्या कहना चाह रही, ठीक है। तो आई डोंट नो, मेरी भी अकल जो है ना वो भी जवाब दे जाती है बातों के ऊपर। हजरत मगरिब के बाद थोड़ी देर सोकर इशा और तरावी पढ़ सकते हैं जी? पढ़ सकते हैं, पकोड़े कम खाया करें, ठीक है। ये जो इशा और तरावी में सारा मसला होता है ना, वो हमारे पकोड़ों की वजह से होता है, पकोड़े कम खाएं। अगर टाइम है तो आप आराम कर लें, ताकि तरावी और इशा जो है वो आराम से पढ़ सकें, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें अकली तौर पर टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत है, ताकि हम जो है ना वो अपने सोचों को दुरुस्त कर सकें। अमाल की टेंशन जो हमने ली हुई है ना, वो बाद में उसकी बारी आएगी, पहले सोचों की टेंशन लेने की जरूरत है, उसको हम ठीक करें। अल्लाह ताला बात की समझ हमें तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
Recording stopped.
ओहो।